ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस जगन्नाथ कथा महोत्सव में स्वागत है। सवेरे से आप बहुत सारा आनंद जुटा रहे हैं, हम जानते हैं। और अभी सबसे जो सबका आस्वादन करने के लिए बहुत आसान ऐसा जो विषय है वो है प्रसादम, महाप्रसादम ऑफ जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी में दो प्रकार के विशेष आनंद हैं, दो प्रकार की विशेष कृपा है। और वो है एक तो जगन्नाथ जी का दर्शन। नारद मुनि के कथनानुसार, नारद मुनि के वरदान मांगने के अनुसार श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी उस महाभाव के अद्भुत रूप में जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। और नारद मुनि की ऐसी इच्छा थी कि उनका दर्शन प्राप्त करके नारद मुनि जी को जो अद्भुत विलक्षण प्रेम का अनुभव हुआ था, वैसे ही विलक्षण प्रेम का अनुभव जनता को हो जब इसी रूप में ठाकुर जी पृथ्वी पर विराजें, पृथ्वी पर अवतरित हो जाएं। तो एक तो लाभ है दर्शन का, जिसको देखते ही सब जीव जो है वो परम आनंद का, परम प्रेम का अनुभव करते हैं और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करते हैं और कभी ना कभी भगवान के धाम में जाने का भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। इंद्रदुम्न महाराज ने जब भी भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, भगवान का स्नान यात्रा संपन्न कर दिया, भगवान की प्रतिष्ठापना संपन्न कर ली ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में, तो उसके बाद में उन्होंने वरदान मांगे कि मुझे कोई पुत्र नहीं होगा और जगन्नाथपुरी में आप केवल थोड़ा ही समय विश्राम करेंगे और जगन्नाथपुरी में रहते हुए आप कभी भी प्रसाद ग्रहण करने में व्यवधान नहीं लाएंगे, यानी एक बार भोग लगेगा और वो भोग प्राप्त करके आप हाथ धोएंगे तो वो हाथ सूखने के पहले ही दूसरा भोग आपको आरंभ करना है। तो जगन्नाथ जी का जो अस्तित्व है जगन्नाथपुरी का, वो द्वारका के भगवान वृंदावन की याद में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और ब्रजवासियों के विरह में उनकी याद कर रहे हैं, आंतरिक विलक्षण विप्रलंब भाव का अनुभव कर रहे हैं और साथ साथ बाह्य दृष्टि से भोजन कर रहे हैं। जब ठाकुर को तपस्या करने की इच्छा होती है तो वो बद्रीनाथ जाते हैं, नर नारायण ऋषि बन के तपस्या करते हैं। जब उनको राज कारबार करने की इच्छा होती है, राजनीति, तो वो द्वारका जाते हैं, द्वारकाधीश बनते हैं। जब सोने का दिल करता है तो वो जाते हैं दक्षिण भारत में, श्रीरंगम में जाते हैं, कांचीपुरम में जाते हैं, सो जाते हैं। जब खेलने का दिल करता है उनको सब कुछ भूल कर, अपनी भी पहचान भूल कर, तो वृंदावन चले जाते हैं। और जब उनको भोजन करने की इच्छा होती है तो वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी को क्या कहा गया है, अन्न क्षेत्र, अन्न परब्रह्म ऐसे कहा गया है। ये बड़ी विशेष भगवान की लीला है। और भोजन ग्रहण करना ये जो विधि है और भोजन में आनंद प्राप्त करना, ये भक्ति मार्ग के जीवन का सबसे पहला कदम है। और हमारे इस्कॉन में तो 99% 99 ऐसे 9-9 आगे लिखते जाओ, उतने भक्त जो है वो प्रसाद खाकर ही अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत कर चुके हैं। तो ये बहुत ही एक सरल, दिल को छूने वाला, एक ही आसान सा मार्ग है जिससे हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान की अनुभूति बहुत ही सहजता से उनका प्रसाद ग्रहण करके हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उनका प्रसाद, उनका महाप्रसाद साक्षात उनसे अभिन्न है, वही है वो स्वयं प्रसाद में, और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे ही ये जगन्नाथ पुरी की महाप्रसाद की महिमा है। और वैसे भी भगवान का प्रसाद तो सब जगह मिलता है, द्वारका में मिलता है, बद्रीनाथ में मिलता है, श्रीरंगम में मिलता है, वृंदावन में मिलता है, जगन्नाथपुरी में मिलता है, लेकिन सब में कहा गया है कि जहाँ पर केवल अति विशेष कारण से भोजन का ही आनंद लेने के लिए भगवान विराजे हैं, वहाँ के प्रसाद का स्वाद पूरे जगत में अद्भुत है, पूरे जगत में विलक्षण है। 14 भुवन में जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की जो रुचि है उसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसका महात्म्य है। तो ये जो अन्न क्षेत्र, अन्न पर ब्रह्म क्षेत्र जो माना गया है श्री जगन्नाथपुरी धाम को, तो ये उसकी विशेषता ये है कि इनका जो रसोई घर है वो 1 एकड़ का है, और भी बहुत जगह है वैसे, लेकिन मेन जो किचन है वो 1 एकड़ का है, और इसमें 752 चूल्हों का इंतज़ाम किया है, 3 फुट चौरस और 4 फुट ऊंचाई का, ऐसा एक एक मट्टी का चूल्हा है, 752 चूल्हे बनाए गए हैं। ये जो पूरा इलाका है वो 9 रसोई घर में उसका विभाजन किया गया है, उसमें 5 रसोई घर में गीली रसोई बनती है और 4 रसोई घर में बचे हुए सूखा प्रसाद, यानी कि लड्डू बर्फी जो भी होता है ना, जो सूखा प्रसाद कहते हैं उसको, जो बहुत दिन टिकता भी है और वो दूर तक उसको ले जा सकते हैं। तो 5 रसोई गीला, यानी कि दाल चावल दाल और कोई मिठाई होगी जो गीली होगी, सब्जियां होगी, कोई बड़े होंगे, इस प्रकार की जो आइटम्स हैं वो 5 किचन में बनाए जाते हैं। 5,000 कुल जो रसोइयां हैं, आचारी रसोई बनाने वाले, वो 5,000 लोग इसमें कार्यरत हैं। उसमें एक समय पर अपने अपने ड्यूटी के अनुसार 1,000 रसोई बनाने वाले लोग प्रवेश करते हैं अपनी ड्यूटी पर। और जगन्नाथपुरी की एक विशेषता है, पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में भगवान के लिए रसोई बनाने वाले जो है वो उपवास में आते हैं, व्रत में आते हैं, यानी खाली पेट आते हैं, भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगता है, फिर जब उनके पास पहुंचता है तो उसके बाद में वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी ऐसा एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर जगन्नाथ भगवान के निर्देश के अनुसार जितने भी रसोई बनाने वाले हैं वो आने के पहले भरपेट खा के आते हैं, कोई अन्न पे वासना नहीं होनी चाहिए, जगन्नाथ जी को पूरे वासना रहित भाव से भोजन बनाने के लिए वो योग्य रूप में आते हैं। 1,000 रसोइया एक बार प्रवेश करते हैं और उसमें से जो 500 लोग हैं वो चूल्हे पर काम करते हैं, यानी कि फायर अग्नि पर जो प्रत्यक्ष जो रसोई बनाने का काम करते हैं। 300 लोग जो बचे हुए हैं उसमें से 300 लोग वो जो खास अग्नि पर काम करने वाले हैं उनको डायरेक्ट सेवा करते हैं, जैसे पानी ला के देना, भिगाए हुआ दाल ला के देना, कटी हुई सब्जी ला के देना, और कुछ चाहिए तो ला के देना, मसाले का सामान ला के देना, जो भी उनको चाहिए वो डायरेक्ट उनको प्रत्यक्ष में उनको पहुँचाते हैं। और बचे हुए 200 लोग जो हैं वो अगन नाम की जगह पर जो बाहर होता है, वो चूल्हों की एरिया से अलग होता है, वहाँ पर 200 लोग अलग अलग काम निश्चित रूप से वही काम हमेशा के लिए करते रहते हैं। जैसे कि नारियल को ग्रेट करना होता है ना, नारियल को वो कुछ लोग वही करते रहते हैं, और आप जब भी जाएंगे आपको वो लोग वही करते मिलेंगे। फिर कुछ लोग कद्दू काटते रहेंगे, कुछ लोग सब्जी काटते रहेंगे, कुछ लोग और कुछ काटते रहेंगे, कुछ लोग और बाकी जितने सामान है वो कटौती करने का काम जो है, भिगाने का, कटौती का और कटौती करने का काम जो है वो 200 लोग करते हैं। ऐसे प्रकार से 1,000 लोग एक साथ में रसोई बनाते हैं। और पूरे दिन में मिलकर 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। ये गलत फहमी है कि जगन्नाथ जी हर समय 56 भोग प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जी 56 प्रकार के व्यंजन एक दिन में खाते हैं और उसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, जैसे कि 9 प्रकार के वो चावल के पदार्थ खाते हैं, कभी मीठा चावल, नमकीन चावल, कभी दही चावल, कभी दूध चावल, कभी मलाई चावल, ऐसे प्रकार कई प्रकार के चावल, वो 9 प्रकार के चावल एक दिन में होते हैं। 14 प्रकार की सब्जियां, सब्जी पदार्थ, यानी कि कोई कद्दू की सब्जी है या कोई दाल मिला के सब्जी है, कोई करी है, कोई लिक्विड है, वो 14 प्रकार का होता है। 9 प्रकार के दुग्धजन्य पदार्थ होते हैं, यानी कि दूध की सहित दही भी हो सकती है, रबड़ी भी हो सकता है, या खीर भी हो सकती है, या और कोई दूध का मलाईदार पदार्थ होता है। 9 पदार्थ हो गए। और फिर 11 प्रकार के वो मिष्ठान खाते हैं। अभी क्या क्या उनका ओडिया में नाम है मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन इतने सुंदर स्वादिष्ट, हमने नाम पता ना होने पर भी जिह्वा को उसकी पहचान है, ऐसा हमने उसका आस्वादन किया है। और 13 प्रकार के सूखे आइटम, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेस्ट्रीज कह सकते हैं, जैसे केक्स होते हैं, बड़े होते हैं, जो बटाटा वाटा जैसा होता है ना, वैसे बड़े होते हैं, ऐसे 9 चावल के, 14 सब्जियों के, 9 दूध के बनाए हुए पदार्थ, 11 मिष्ठान और 13 प्रकार के केक, मिलकर ये 56 भोग जो है भगवान लेते हैं। और विशेष बात यह है कि किचन में भगवान के कोई बिजली नहीं है, कोई मिक्सर नहीं है, वहाँ पर नारियल कटता है, लेकिन नारियल जो है वो हाथ से उसको पीसा जाता है। हमारे घर में भी और अभी भी पुराने ज़माने में काले पत्थर के वो जो मिक्सर होता था, उसको हम वाटा पटा वरवंटा कहते थे मराठी में, हाँ, उसको हाथ से पीसते हैं। हमारे साउथ इंडिया में गोल गोल पीसते हैं और महाराष्ट्र में ऐसे सामने सामने पीसते हैं, तो सारे मसाले भी उसमें बन जाते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, शाम के समय जो भोग बनता है वो मिट्टी के तेल के प्रकाश में बनता है, कोई बिजली का गुंजाइश वहाँ पर नहीं है, चाहे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, कुछ भी हो। खुले आम आकाश के लिए सामना, आकाश का सम्मुख एंड ओपन एयर उनका भोग बनाया जाता है। और 3 बातें विशेष हमारी जो इस्कॉन की प्रभुपाद की शिष्या यमुना माता जी हैं, वो कहते हैं कि 3 प्रकार की बातें उन्हें विशेष हृदय को छुई जगन्नाथ जी के किचन की, क्योंकि वो भी बड़ी खुद बड़ी रसोईया थी, प्रभुपाद जी के आंदोलन में सबसे पहली सुंदर रसोईया, और जिनको वर्ल्ड का चैंपियनशिप और वो अवार्ड मिला था उनको, उनके रसोई के किताब को। वो माता जी जगन्नाथपुरी में जब गई तो उन्होंने बताया कि विशेष करके जो ऐतिहासिक प्राचीन जगन्नाथ जी के रसोई की पद्धति है वो उन्होंने आज तक बनाए रखी है, उसमें से कोई आधुनिकता उसके अंदर नहीं आई, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, जो पुराना तरीका है वही उन्होंने आज तक धरोहर के रूप में संभाल के रखा है, 1। और 2 जो है, हर एक रसोइयों को पारिवारिक ट्रेनिंग मिलती है, उनकी जो परवरिश है, उनकी शिक्षा प्राप्त होती है, वही लोग जन्म मतलब पीढ़ी जात एक के बाद जितनी पीढ़ियाँ होती है वो सभी पीढ़ियाँ जो है वही काम करती हैं, विशिष्ट काम करती हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो बहुत ही विस्तार पूर्वक रूप में होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटिकुलस ट्रेनिंग, एकदम सूक्ष्म रूप से उनका शिक्षा देते हैं उनको। और 3री बात यह है कि उनका जो प्रसाद बनाने का तरीका है वो भी अद्भुत है, प्रसाद बनाने के बाद में जो भोग लगाने के लेके जाने का तरीका है वो भी अद्भुत है, भोग लगाने का तरीका अद्भुत है, और भोग लगने के बाद में महाप्रसाद वितरण का तरीका अति अद्भुत है। इतना शिस्तबद्ध रीति से वो ये प्रसाद का वितरण करते हैं। और आगे जाकर कहा गया है कि जो प्रसादम बनता है उसको रसोई घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई पंछी वो वहाँ पर नहीं आ सकता है, वहाँ पर बाकायदा पहरेदार रहते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जगन्नाथ जी का भोग जो है अगर किसी कुत्ते, बिल्ली ने या कुछ ने देख लिया तो उसको फेंका जाता है, वो भगवान के भोग लगाने के योग्य नहीं रहता है। इसलिए जब भी दिन में 6 भोग लगते हैं, कभी कभी 8 बार भी लगते हैं, सुबह 8 बजे पहले भोग लगता है, फिर 10 बजे लगता है, फिर 11 बजे लगता है, फिर दोपहर को 2 बजे लगता है, फिर 4 बजे लगता है, फिर रात को 7 बजे लगता है, और फिर रात को 11 बजे भी लगता है, बड़ा बड़ो श्रृंगार भोग कहते हैं उसको, बड़ो श्रृंगार वेश के साथ में रात को 11:30 बजे उसको भोग लगते हुए मैंने देखा है अपनी आंखों से। और जब तैयार होता है ना, जैसे आइटम व्यंजन जब तैयार होते हैं तो विशेषता क्या है, बड़े बड़े मट्टी के मटके में उनको बनाया जाता है, बड़े बड़े यानी कि एक एक मटके में कम से कम 40 किलो चावल भी बन सकता है कभी कभी बनाना हो तो ऐसे बड़े बड़े मटकों को वो सीधे चूल्हे पर रखते हैं, और एक चूल्हे पे एक बर्तन रखते नहीं तो एक चूल्हे पे कभी कभी 4 से 7 बर्तन रखते हैं। और विशेषता ये है कि हम तो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी बायोलॉजी हमारा साइंस है वो बताता है कि सबसे अग्नि को स्पर्श करने वाला जो पात्र है उसमें अन्न पहले पक्व होना चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी का रसोई घर का ये चमत्कार है कि सबसे पहले सबके ऊपर जो 7वां बर्तन रखा है वो पक्व पहले हो जाता है, उसके अंदर का सामान पहले पकता है तो उसको नीचे रखते हैं, फिर उसके बाद वाला पकता है उसको नीचे रखते हैं, और आखिर में सबसे नीचे जो अग्नि के संपर्क में है वो उसका अंदर का अन्न जो है सब्जी दाल जो भी है वो पक जाती है। ये और एक चमत्कार है जगन्नाथ जी का रसोई घर का। फिर जब बन जाता है तो हम लोग हमारे मंदिर में क्या करते हैं, उसमें से कुछ कुछ सब आइटम निकालते हैं, एक थाली में रखते हैं, कटोरी में रखते हैं, चम्मच रखते हैं, पानी रखते हैं, तुलसी रखते हैं, और उसको भगवान को भोग लगाते हैं, और उसको हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं। जगन्नाथपुरी की विशेषता क्या है, जगन्नाथपुरी की विशेषता यह है कि जितना बड़ा मटके में चूल्हे पर रखते हुए भोजन बनाया गया है वो ही पूरा मटका का मटका जगन्नाथ के सामने प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाता है। और भेजने का भी कैसा तरीका है, वो उनका एक गुप्त मार्ग है, उसको टनल मतलब सुरंग जैसा है, वो ऊपर से पूरा ढका हुआ है, एक भी सूरज की किरण जो है वो भोग पर नहीं पड़नी चाहिए नहीं तो वो भोग त्याज्य हो जाता है। तो सबसे पहले सैनिक जो लोगों का आवागमन रोक देते हैं जब भोग जा रहे हैं, उसके बाद वाद्य बजाने वाले वाद्य बजाते हैं बहुत सुंदर, उसके बाद में एक्चुअल महाप्रसाद मतलब एक्चुअल भोगा वो जाता है, कई मटके एक साथ प्रवेश करते हैं, उसके पीछे फिर वाद्य बजाने वाले, उसके बाद में फिर सैनिक यानी पहरेदार या सिक्योरिटी कुछ भी कह सकते हैं हम। और ऐसे सुरक्षा में किसी की नज़र न पड़ जाए, कोई सूरज की किरण न पड़ जाए, कोई कुत्ता बिल्ली पंछी अन्य जीव की नज़र न पड़ जाए, इस प्रकार से संभालते वो उसको गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। फिर गर्भगृह में जाने के बाद में जो मुख्य पांडा है वहाँ का, वो चावल के आटे से कुछ यंत्र बनाते हैं, गुप्त यंत्र, और वो गुप्त यंत्र जो है उसके ऊपर ये भोग रखते हैं, फिर घंटी बजाकर कुछ मंत्र बोलते हैं, पर्दा बंद करते हैं, फिर भगवान उसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हो सकता है चावल के 2 पात्र हो सकता है सब्जी के 2 पात्र हो, लेकिन कुल मिलकर 56 व्यंजन पूरे दिन के 7-8 भोग में भगवान प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्या होता है उसके बाद में, वो जो भोग लगता है भगवान को उसमें से कुछ कुछ हिस्से निकालकर सीधे वहां से कुछ किलोमीटर अंतर पर बिमला देवी का मंदिर है, उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। तो बिमला देवी को दिए हुए वचन के अनुसार, वादे के अनुसार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बिमला देवी को अर्पण किया जाता है, और उसके बाद में ही उसको महाप्रसाद ये पदवी प्राप्त होती है, क्योंकि बिमला देवी भगवान की परम भक्त हैं और बहिरंगा शक्ति भी है, और उनको भोजन कराने के पश्चात वो जैसे संत को भोजन कराते हैं महाप्रसाद बन जाता है, जब वो महान भक्त भगवान का जब ग्रहण करता है तो वो महाप्रसाद की पदवी जो है वो प्राप्त करता है। अच्छा, और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जगन्नाथ जी जो प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त होता है, वो जो भोग होता है उस भोग के अंदर हमारी कोई भी मिर्ची नहीं होती है, ना लाल रंग की होती है ना हरी रंग की होती है, हाँ कोई लहसुन प्याज का गुंजाइश तो है ही नहीं, ना गाजर है ना आलू है ना बैंगन है ना कॉलीफ्लावर है ना पत्ता गोभी है ना फूल गोभी है ना टमाटर है, ऐसे कैप्सिकम हाँ शिमला मिर्च ऐसे कोई प्रकार के व्यंजन नहीं खाते हो, केवल अति सात्विक जो लोकल बना हुआ जो सब्जी है वही खाते हैं, दालें सभी खाते हैं लेकिन उड़द दाल नहीं खाते हैं, और कई प्रकार के ऐसे जो बहुत ही गिने चुने आइटम खाते हैं। आलू जो इतना कॉमन आइटम है वो भगवान जगन्नाथ ग्रहण नहीं करते, इसलिए जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में कोई आलू नहीं रहेगा कहते हैं इडली रहती है, चावल का बना हुआ कुछ केक रहता है उसके अंदर। तो विशेष रूप से ये सब आइटम छोड़ने के बाद में बचता क्या है, फिर कद्दू बचता है, कंदमूल बचते हैं, फिर दाल बचती हैं, फिर बहुत सारी व्यंजन सब्जियां होती है उसके अंदर, लेकिन बहुत कम नंबर में होती है। और उसके बाद में हर रोज़ पहला भोग भगवान को लगाने के पहले किचन में एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ में आहुति करती है, जगन्नाथ जी की कृपा ग्रहण कर ली जाती है और उस अग्नि में जो लकड़ी जलाई गई है उसी लकड़ी से 752 चूल्हे जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। और ये यज्ञ मशाल चूल्हे को प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद में फिर उसको पात्र अर्पण करके उसमें भोजन बनाया जाता है। ऐसा ये जगन्नाथपुरी का महत्व है। और जगन्नाथपुरी का जो विशेषत्व ये जो है वो 7200 किलो का जो रोज का चावल बनता है वहाँ पर, मैं आपको एक अंदाज दे रहा हूँ, ऐसे रोज के पैमाने पर फिक्स्ड जितना चावल कितना बनना है, कितने चावल का चावल बनना है, कितने दाल की दाल बननी है, ये सब फिक्स्ड है उनका। लेकिन विशेषता क्या है कि 7200 किलो मुझे एक याद है, चलो जिसका दिन भर में इतनी चावल का इस्तेमाल होता है उसका जो भी प्रसाद बनता है, फिर कुछ दाल भी बनती है, फिर कुछ सब्जी भी बनती है, फिर कुछ मिठाई भी बनती है, ये सारी चीज़ को ग्रहण करने के लिए अगर उत्सव में 25 लाख भी आ जाए तो भी कभी वो समाप्त नहीं होता है, तो 10,000 लोग भी खाएंगे तो भी समाप्त नहीं होता है। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद के और भोग की ये विशेषता है कि कितने भी लोग वहाँ पर भोजन करने आए, जब आखिरी दर्शन बंद होता है, आखिरी व्यक्ति खाता है, तब तक वहाँ पर प्रसाद उपलब्ध होता है। ये जगन्नाथपुरी की एक विशेषता है। और आगे देखा जाए तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। देखिए जगन्नाथपुरी में हमारा जो अनुभव हम बताना चाहते हैं कि जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद कैसे पर्याप्त होता है। एक बार हम जगन्नाथपुरी गए थे यात्रा लेकर, तो हम जाते हैं एडवांस पार्टी में और हमारे पास 15 लोग आने वाले थे 2-3 दिन पहले, हमारी मैनेजिंग कमेटी वगैरह सब, मैं भी पहले पहुंच गया। तो हमारा ऐसा हमेशा इच्छा होती है कि जगन्नाथपुरी पहुंचते ही पहला भोजन मुंह में जगन्नाथ का महाप्रसाद ही जाना चाहिए। तो वैसे व्यवस्था भी करके रखी थी। तो हम पहुंच गए तो एक आदमी आते ही एक सर पे बड़ी टोकरी लेकर आ गया, उसके अंदर छोटे छोटे पात्र थे, कुछ 7-8 पात्र थे। तो मैंने पात्र को देखा, मैंने कहा ये तो मैं अकेले ही खा जाऊँगा। तो मैंने कहा भैया इतने लेके आए क्या आप, मैं तो 15 लोग हैं और मुझसे 3 गुना बड़ा मेरा भाई भी आने वाला है और बाकी भी 13 लोग होंगे इसके अंदर, कैसे ये पर्याप्त होगा। तो वो एकदम सीधा साधा आदमी था बेचारा, केवल लुंगी पहना हुआ था, ऊपर से भी उसकी चेस्ट खुली थी, ऐसा सिंपल सा आदमी था, सर पे एक कपड़ा रखा था, टोकरी लेकर आया था। इतनी श्रद्धा से बोला प्रभु जी आप पाइयो तो सही, कम पड़ेगा तो लेके आएंगे। तो हमने मन में संकोच और संशय लेते हुए पहले तो दिल भर के जितना चाहिए था खा, बहुत भूख लगी थी, बहुत बढ़िया से आस्वादन किया प्रसाद का। फिर हमारे बड़े भैया भी आ गए, उन्होंने भी दिल भर के आस्वादन किया। फिर 13 लोग भी आ गए, उन्होंने भी दिल भर के आस्वादन किया। और क्या कहें आपको, इतने से पात्र दिख रहे थे, उसमें भी सबको मैंने पहले खाया था ना, मैं तो मैं फ्री था उनको परोसने के लिए, जितना परोसा इतना परोसा, खाओ खाओ खाओ, सब लोग भी यहाँ तक गले तक खाया। सबको देने के बाद में भी इतने पात्र से कुछ कुछ प्रसाद बचा, हमने बहुत आग्रह किया खाओ खाओ, वो खा नहीं पाए, बोला बहुत हो गया। फिर वो होटल के लोगों को बांटना पड़ा। पहला अद्भुत अनुभव हुआ, बाप रे इतने से पात्र दिखते थे लेकिन कितना प्रसाद था उसके अंदर, मानो अक्षय पात्र ही है वो। फिर हमारे 200 लोग यात्रा में आए, फिर रात को 8 बजे महाप्रसाद का इंतजाम किया गया था, दोपहर का राजभोग, रात को महाप्रसाद। 200 लोग थे तो भाई इतने पात्र आए, थोड़े से बड़े आए। तो हमने कहा पांडा जी ये तो 200 लोग हैं, वो बहुत बम्बई वाले बहुत सुनकर आए हैं, महाप्रसाद के बारे में बहुत इच्छा रखते हैं कि बड़ा दबा कर खाएं उसको, पाएं उसको। मैंने कहा प्रभु जी आप पाइए, आपको कम पड़ेगा तो आ जाएगा, कोई चिंता मत करना। क्या कहें आपको, 2 चमत्कार हुए इसके अंदर। तो दोपहर का 3 बजे लगाया हुआ, बाहर निकला हुआ 3:30 से मुक्त हुआ, रात को 8 बजे भोजन में मिल रहा है, तो लगा ठंडा होगा वो शायद, इसलिए हमने क्या किया था उधर ना, एक हमारे रसोई, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच तो हम लोग बनाते थे और शाम का महाप्रसाद आता था, तो हमने रसोई का बोला कि भाई बम्बई के लोगों को ठंडा प्रसाद जो है ना वो हजम नहीं होगा, फिर वो अपचन हो जाएगा, तो आप एक गरम गरम तगड़ा कोई स्पाइसी सूप बना दो और एक अचार का बोतल मंगा लो, सबको अचार खिला दो, तो वो अचार के चटपटाहट से और वो गरम गरम मसालेदार सूप से कैसा है वो पचन करने में जरा अच्छा, हम तो डॉक्टर है ना, हमारा दिमाग वो चलता कैसे है डॉक्टर के रूप में। तो हमने बना लिया, तो हमारे पांडा को पता चला कि डॉक्टर साहब ने अपनी यात्रा में सूप और अचार का भी इंतज़ाम किया है। तो उनको बड़ा क्रोध आया, मतलब उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि ऐसा नहीं जगन्नाथपुरी में होता है, तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों बोल रहे हैं ऐसे। उसके पीछे भावना यह है कि जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते, मतलब क्या, जैसे जगह जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम और परिपूर्ण है, कंप्लीट है, वैसे उनका प्रसाद भी उनके उनसे अभिन्न होने के कारण परिपूर्ण है। उस जगन्नाथ का एक आइटम भी आपको आएगा तो भी वो परिपूर्ण है, उसके साथ में बाहर का कोई भी व्यंजन नहीं खाना चाहिए ऐसा नियम है। अगर कोई खाता है उसके साथ में मुंह लागे के लिए, तो वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का यानी साक्षात जगन्नाथ का अपराध माना गया है। तो जैसे हमको ये ज्ञान दिया गया तो हमने तुरंत उसको बोला कुक को इसको हटा दो, सूप और अचार नहीं चाहिए हमको, हम देखेंगे कल ब्रेकफास्ट में खाएंगे, उसको रखो उसको अंदर। पांडा जी आने के पहले उसको गुप्त कर दिया हमने, गायब कर दिया। तो फिर वो हमने कहा कि अरे भाई इतने इतने पात्र लाए, कैसे दूसरे लोगों को पर्याप्त होंगे, तो जो बोले चलो कोई बात नहीं। अभी ठंडा होने का मन में संचय था ना हमको, तो एक बार पहले वाले को सर्विस किया ना प्रसाद का परोसा, तो थोड़ा सा वो ठंडा था। उसके बाद में जितने लोगों को प्रसाद दिया गया, चाहे चावल बोलो या सब्जी बोलो या दाल बोलो या कुछ भी आप कहो, हर व्यंजन जो था वो गर्मा गर्म था, फ्यूमिंग बाफ आ रही थी उसके अंदर। चार पांच घंटे के बाद में उसको खोला जा रहा है, उसके ढक्कन से ढका नहीं था, केवल दबा हुआ था, जैसे ऊपर का एक थर निकल गया। तो पूरा 200 लोगों को गर्मा गर्म प्रसाद दिया गया, ये तो पहला चमत्कार हुआ। उसके बाद में हमको मन में धाकधुक हो रही थी कि भाई कम पड़ेगा कम पड़ेगा। अरे 200 लोगों को ना प्रसाद की महिमा का कथा तो सुनाया था पहले, सब लोग बड़े उत्साह में थे, बड़े भूखे भी थे, घूमकर भी आए थे, तो हर जगह हर प्रकार से स्थिति बहुत अनुकूल थी प्रसाद के लिए। और हमने उनको बहुत परोसा, अपने हाथ से प्रेम से परोसा, सब लोगों ने एकदम आकंठ उसको ग्रहण किया। आकंठ ग्रहण करने के बाद में और उनको आग्रह किया गया, थोड़ा और भी किया गया, कुछ खड़े हो गए कुछ बैठ गए, इतना सब करने के बाद भी सबको आकंठ भोजन करवाने के पश्चात भी प्रसाद बच गया। और फिर ये रोज की ही कहानी रही, उतने ही आकार के मिट्टी के पात्र आए और फिर भी प्रसाद हर रोज बचा। और फिर इसको दूं कि उसको दूं कि होटल के कर्मचारियों को दूं, ऐसे करके वो 7 दिन ऐसे ही बीते हमारे अद्भुत अनुभव में। और जगन्नाथपुरी की यात्रा जब समाप्त होने का समय आया तो हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो लोगों ने जब फीडबैक दिया तो दो ही फीडबैक दिए, भाई जगन्नाथ जी का दर्शन और जगन्नाथ जी का प्रसाद, ये अविस्मरणीय चीज़ है, इसको कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हैं। बाकी दर्शन कथा सब चलती रही, सबका आनंद हुआ, बिल्कुल बहुत आनंद आया। लेकिन सबसे प्रधान जो दिल पे छाप पड़ी थी वो था महाप्रसाद और जगन्नाथ का दर्शन। तो ऐसा जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है उसको ग्रहण करने भी नियम है, मैं आपको बताता हूँ बढ़िया से एकदम। देखो वहाँ पर बताया जाता है कि जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जगन्नाथ का प्रसाद कभी भी आपके स्तर के ऊपर होना चाहिए, इसलिए कोई भी जमीन पर आसन लेकर जगन्नाथ प्रसाद खाने के लिए बैठने का मना है, क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद आपको पत्तल पर केले के पत्ते पे दिया जाएगा और आप जमीन पर बैठेंगे तब कुछ मिलीमीटर क्यों ना हो वो प्रसाद आपसे ऊंचाई पे रहेगा। अगर आप पाट रख सकते हो तो और खुश हो जाएंगे वो। फिर जगन्नाथ का प्रसाद जो है वो कभी भी आसन पर बैठकर ग्रहण कर करना नहीं होता है। उसके बाद में जगन्नाथ का प्रसाद परोसने के लिए कोई चम्मच और कोई हमारा होता ना दाल परोसने का चावल परोसने का कोई भी हाथ चम्मच इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। अगर बहुत गर्म है तो वो केले का पत्ते का बनाते हैं पंजा, हाँ हाथ को ढक लेते हैं केले के पंजे से और फिर उसको परोसते हैं, दाल भी वैसे परोसते हैं, सब्जी भी वैसे परोसते हैं, हाथ से परोसने का उसका नियम है। फिर नाना पीट नाना खाया आकंठ पुरिया मध्य मध्य होरी को है मध्य मध्य जगन्नाथ को है आनंदित होना। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन लिया है भक्तों के साथ, स्वरूप दामोदर रामानंद राय हरिदास ठाकुर सबके साथ भोजन किया है, तो क्या कहते हैं अनेक प्रकार के नाना पेट नाना खाइया आकंठ पुरिया, पेट भर के खाओ गले तक खाओ, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन दो दो ग्रास खाने के पश्चात जय जगन्नाथ बोलो, ऐसा वहां का नियम है। फिर जगन्नाथ का प्रसाद खाने में ऐसा नियम है कि उसमें कोई मुझे ये दो मुझे यही चाहिए वो अच्छा लगा ये अच्छा नहीं लगा ऐसे नहीं, बिना भेदभाव के सारे व्यंजन खाने हैं, सारे व्यंजन ग्रहण करने हैं आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक। उसके बाद में भोजन आपने आनंद लिया, उसका भोजन किया, जो कुल्ला करने जाएंगे ना, जिसको गार्गलिंग कहते हैं, पहला गार्गल जो है उसको पी जाना है, तो मुंह में अटके हुए प्रसाद के कण जो है वो जमीन पर या बेसिन में गिरने नहीं चाहिए, पहला वाला पूरी तरह से अच्छे तरह से कुल्ला करके उसको पी जाना है आपको, इसलिए पीने के पानी से ही करना है। हाथ भी धोना है तो वॉश बेसिन में नहीं, जमीन पर धोना है, अगर आपके हाथ के प्रसाद के कण गिरने हैं तो जमीन पर गिरने चाहिए, जहाँ प्रसाद पाया गया है वो प्रसाद कई जगह अगर स्वच्छ करनी है तो वो हाथ और जल से ही करनी होगी, कोई झाड़ू और कपड़े से नहीं होगी, और कोई अन्न कण गिरे होंगे तो तुरंत उसको खाना चाहिए, अगर जमीन पे गिरे हुए हैं तो साफ करने वाले व्यक्तियों को। और मैंने जैसे पहले बताया, कोई भी अचार पापड़ सूप हमारा दिमाग के अनुसार उसमें जोड़ना नहीं चाहिए, जो भी चार आइटम आए, एक आइटम आया, दो आए, सात आए, 15 आइटम आए, तो उसको बिना किसी और सप्लीमेंट के साथ खाना चाहिए। इसका हमको आदत है ना मुंबई में, हमको अचार पापड़ सलाद तो चाहिए ही चाहिए, जो भी आप मेनू का ऑर्डर देंगे, जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं चलता है। तो ये सब नियम हुए जगन्नाथपुरी का प्रसाद ग्रहण करने के। अभी चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में प्रसाद ग्रहण किया है, अभी आप देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए तो उनको सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत प्रकार के व्यंजन परोस दिए गए, सबको बिठाया। कहते जगन्नाथपुरी में पहुंचने के बाद जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को पहले खिलाया, अपने हाथ से परोसा उसको, फिर कोई खा नहीं रहा है तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कान में कहा कि महाप्रभु जी आपके खाए बिना कोई खाएगा नहीं, आप बैठे ही साथ में, तो वो फिर बैठे और उन्होंने भी आस्वादन करना शुरू किया। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने जब भी महाप्रसाद का आस्वादन किया तो इतने भाव विभोर हो गए, उनके आंखों से पिचकारी की तरह अश्रु बहने लगे नहीं निकलने लगे, उनके शरीर के रोमांच खड़े हो गए, कंठ गदगद हो गया उनका, थर थर कांपने लगे वो, उनके शरीर का ये परिवर्तन देखकर सब भक्त लोग बड़े अचंभित हो गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रेम से एकदम मदमस्त हो गए महाप्रसाद खाने के बाद, वो कहने लगे, अभी वो प्रसाद का वर्णन कर रहे हैं, उनको भक्त लोग पूछ रहे महाप्रभु जी ये इसका चमत्कार कैसे हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान से सुनिए, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये स्वाद जो है, पहले उन्होंने ऐसे ही पूछा अनजान की तरह कि ये स्वाद और ये सुगंध कहाँ से आ रही है, पता नहीं चल रहा है, फिर खुद ही उसका उत्तर देते हैं कि ये जो स्वाद वह है ये हमारे प्रिय जगन्नाथ कृष्ण के होठों का स्वाद है, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो होठ है उनके अंदर कोई बहुत ही दिव्य ऐसा सुगंध होता है, और उनका महाप्रसाद ग्रहण करने से उनके होठों से लगा हुआ जो अमृत है जिसको हम अधरामृत कहते हैं वो उस अन्न में उन प्रसाद में मिल जाता है, और उसी की वजह से जगन्नाथ के महाप्रसाद में बहुत दिव्य सुगंध और बहुत दिव्य स्वाद निर्माण होता है। वो कहते हैं जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करने से जगन्नाथ के साथ आनंद रमण करने की जो इच्छा है वो तीव्र हो जाती है, भौतिक दुनिया में जो सुख दुख का बोझ है, भौतिक दुनिया में जो कुछ खोने पर जो शोक होता है वो सब जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने से नष्ट हो जाता है। जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करने पर मन जो है वो उत्तेजित हो जाता है, आत्मा में उत्तेजन निर्माण होता है, इंग्लिश में कहते हैं ना There is an agitation in the mind, in the senses, to love the Lord and to have pastimes with the Lord. फिर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ब्रह्म शिव इंद्र आदि महान महान देवताओं को भी ये महाप्रसाद प्राप्त नहीं होता है। जिसके पास पूर्व जन्म के पूर्व समय के अनंत पुण्य कर्म संचित हैं और जिस पर श्री कृष्ण की कृपा है उसी व्यक्ति को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करने का अवसर और भाग्य प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करने के बाद में विश्व में किसी भी भोजन के व्यंजन में जो भी मिठास है या जो भी स्वाद है रुचि है वो सब व्यक्ति भूल जाता है, फॉरगेट्स ऑल द ट्वेस्ट एंड स्वीटनेस ऑफ एनी अदर आइटम इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। श्री कृष्ण भगवान में जितने दिव्य गुण हैं वो सब दिव्य गुण भगवान के दिव्य होठों के माध्यम से उस महाप्रसाद में उतर जाते हैं और ग्रहण करने वाले व्यक्ति में भी उसका प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। ये स्वयं अपने श्रीमुख से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का गौरव किया है। अभी देखिए पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण में इस महाप्रसाद का क्या क्या वर्णन दिया है। जगन्नाथ महाप्रसाद कभी भी दूषित नहीं होता है। हमारा जो मेडिकल माइंड है या भौतिक माइंड है, हमारा जो है मन जो है, वो क्या क्या बोलता है, ये तो बासी हो गया, ये तो पुराना हो गया, इसका तो स्वाद बिगड़ गया। जगन्नाथ महाप्रसाद तत्वतः कभी भी बिगड़ता या दूषित होता नहीं है, कभी वो उस पर दोष निर्माण नहीं होते। अगर वो समझो कुत्ता उसको खा रहे हैं, हाँ होता है ना, वहाँ पर भी बहुत सारा प्रसाद का वितरण का स्थान होता है तो प्रसाद गिर जाता है, तो कुत्ते वित्ते आके भी खाते रहते हैं। ऐसा लिखा गया है पुराणों में कि अगर कुत्ते ने जगन्नाथ का महाप्रसाद खाया और उसके मुंह से भी कुछ गिरा तो भी एक सुसंस्कृत कल्चर्ड ब्राह्मण जो है उस प्रसाद को ग्रहण में करने में कोई संकोच नहीं करेगा, क्योंकि उसको दूषित नहीं माना जाता है। जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर 10 मुंह से भी होकर आपके पास आएगा तो उल्टा वो महा महा प्रसाद हो जाएगा, उसकी शक्ति और जो दिव्यता है वो बढ़ जाएगी, लेकिन वो कभी भी दूषित नहीं होगा। और अगर कोई पापी नीच जाति का या नीच व्यवहार का कोई अधम भी उसको प्राप्त करता है तो उसके बाद भी अगर ब्राह्मण को उसका दिया जाए तो वो दूषित नहीं होता, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रसाद को कैवल्य कहा गया है। कैवल्य यानी वो जगन्नाथ से कैवल्य प्राप्त कर चुका हुआ आइटम है, जैसे यानी कि जगन्नाथ से अभिन्न है वो, जगन्नाथ जी और महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो कैवल्य रूप जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो ग्रहण करता है वो स्वयं मुक्ति को प्राप्त करता है, स्वयं भगवान के चरणों में निवास स्थान प्राप्त करता है जो उसको ग्रहण करता है। और एक जगन्नाथपुरी में एक जगह है जिसका नाम है आनंद बाजार, पूरे विश्व में फेमस जगह है वो। हाँ, जगन्नाथपुरी में लोगों को जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ है शायद पता नहीं होगा, लेकिन आनंद बाजार कहाँ है बिल्कुल पता होता है, सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का भोग लगने के बाद जब महाप्रसाद बनता है तो वो महाप्रसाद वहाँ पर बिकाऊ रूप में वहाँ पर पहुँच जाता है। और उस आनंद बाजार को हमारे भारत के प्रसिद्ध संत जो हुए हैं स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा है कि द बिगेस्ट रेस्टोरेंट ऑन अर्थ इज आनंद बाजार, ओपन एयर रेस्टोरेंट जो 6500 स्क्वायर फुट पर बना हुआ है। यहाँ तक कि जगन्नाथ जी जाते हैं उधर गुंडीचा में तो वहाँ पर भी इतने ही इलाके में जगन्नाथ जी का आनंद बाजार वहाँ पर लग जाता है, और सब प्रकार के जितने 56 प्रकार के प्रसाद बनते हैं वो सब कुछ वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहे। उसकी क्या क्या विशेषता है कि विश्व का सबसे भोजन प्रसाद मेला, हाँ उसको माना गया है, गरीब और अमीर बिना भेदभाव के एक ही जगह खड़े होकर वहाँ पर प्रसाद प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर प्रसाद खरीदा और तुरंत मुँह में डाला, इस प्रकार की गतिविधि होती है वहाँ पर, कोई रुकने का कोई काम नहीं है, जैसे लिया उसका दाम चुकाने के पहले वो आइटम मुँह में डाल दिया। और उड़ीसा और जगन्नाथपुरी में क्या विशेषता है, जब शादी का रिश्ता तय होता है, पक्का हो जाता है, तो पक्का होने के उपलक्ष्य में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद परोस जाता है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करते हुए, ग्रहण करते हुए शादी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं, चाहे वो जन्म का उत्सव हो, चाहे अंत्येष्टि का उत्सव हो, सब उत्सव में, मैयत के उत्सव में भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ही वितरित करते हैं। यहाँ तक कि आप जगन्नाथ जी के किसी होटल में रुके हो और आपको जगन्नाथ जी के आनंद बाजार जाने का शक्ति नहीं है, समय नहीं है, धूप हो रही है, आपको अभी आपको भूख लग रही है, तो हर प्रकार के होटल में भी जगन्नाथ जी का ही चावल महाप्रसाद प्राप्त होता है। बाकी सारे व्यंजन होटल में बने होंगे लेकिन चावल जो है सारे होटलों में जगन्नाथ जी का चावल महाप्रसाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी क्या प्रसाद की विशेषता देखिए आप। अभी हम जगन्नाथ जी का प्रसाद के विषय में, हमारे जगन्नाथ जी एक सीमांत में भी है राजापुर में, और ये जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो पूरे विश्व में इतना महत्वपूर्ण है। अभी देखो जगन्नाथपुरी में और एक स्थान है उसका नाम है गुंडीचा, और गुंडीचा स्थान की विशेषता क्या है कि गुंडीचा स्थान में जगन्नाथ जी साल में एक बार 7 दिन निवास करते हैं, कुल मिलकर जाना आना मिलकर 9 दिन वहाँ पर रहते हैं। तो जगन्नाथ जी का मंदिर जो है वो जिसको द्वारका स्वरूप माना गया है, जहाँ पर भगवान विरह में रहते हैं, वृंदावन की याद में रहते हैं, और कहते हैं ना कि जिसको बहुत याद आती है किस चीज़ की, वो थोड़ा सा मन के तनाव में रहता है, थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, तो डिप्रेशन का मरीज़ जो है ना वो बहुत खाता है, हमारे साइकियाट्री डिपार्टमेंट के बाहर आप बैठेंगे ना तो कुछ डिप्रेशन के मरीज बैठे रहते हैं, उनको देख के आप पहचान सकते हो, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज है ना बहुत मोटे होते हैं। मन के अंदर आए हुए डिप्रेशन का सामना करने के लिए ये लोग खाते रहते हैं, कभी चिप्स खा लिए, कभी ड्राई फ्रूट खा लिए, कभी फल खा लिए, कभी सब्जी खा लिए, दिन भर खाते रहते हैं। अपने खा खा कर उसके जो संतुष्टि का अनुभव करते हैं उसकी संतुष्टि के द्वारा मन के तनाव को नष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, और मन के तनाव को नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो विनोद में ऐसा कहते हैं कि उनको राधा रानी की ब्रजवासियों की इतनी याद आती रहती है, इतना भाव में रहते हैं कि वो सो दुख को अंदर के विप्रलंब के दुख को मिटाने के लिए वो 56 भोग का आस्वादन करते हैं। इसलिए जिस चाव से वो भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए पूरे विश्व के अंदर जितने भी कृष्ण भगवान के रूप हैं, मंदिर हैं, सबका प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। कृष्ण प्रसाद ये जो तत्व है वही स्वादिष्ट तत्व है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व के जितने विष्णु के मंदिर हैं उन सबसे स्वादिष्ट प्रसाद की जो महती है वो जगन्नाथ के महाप्रसाद की है। लेकिन जगन्नाथ पुरी में भी उससे भी अधिक स्वादिष्ट महाप्रसाद बनता है जब जगन्नाथ जी भगवान रथ में बैठकर गुंडीचा में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब ही जगन्नाथ जी के सामने इंद्रदुम्न महाराज ने जब वादा वचन मांगे थे ना, वो वरदान मांगे थे, तो उन्होंने अपने अपने वरदान पूरे भाव विभोरता में पहले ही मांग लिए। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे ये इच्छा है कि आप जगते ही रहो, बहुत कम समय सो जाओ, हाथ सूखने के पहले दूसरा भोग पालो, वगैरह वगैरह। तो गुंडीचा देवी तो दुखी हो गई, अरे मुझे पूछे बिना मुझे पुत्र नहीं होगा इसका वरदान मांग लिया, लेकिन बहुत पतिव्रता थी वो, तो पति से उन्हें कुछ संघर्ष नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मेरे पति ने अगर वरदान मांग ही लिया है कि मुझे पुत्र नहीं होगा तो मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी, तो भगवान जगन्नाथ जी आप मेरे पुत्र बनो। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, आप मेरी मौसी माँ बनो तो मैं आपके पुत्र जैसा हो जाऊंगा, और वादा भी किया कि अगर आप मेरी मौसी माँ हो, मुझ पर प्रेम करती हो, मैं भी आप पर बड़ा प्रेम करता हूँ, तो आपको मिलने के लिए साल में 7 दिन मैं आपके पास आऊँगा और आपके पास रहूँगा। तो रथ यात्रा का ये दूसरा एक रहस्यमय कारण ये भी है कि वो वहाँ पर जाते हैं अपनी मैया को मिलने के लिए, मौसी माँ को मिलने के लिए। इंद्रदुम्न सरोवर के पास मौसी माँ का मंदिर है, वहाँ पर जगन्नाथ जी उनको मिलते हैं। दूसरा भाव उनका यह है कि गुंडीचा रानी का जो महल है जिसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं, वो वृंदावन का गुप्त रूप है, इसको गुप्त वृंदावन कहते हैं। और गुप्त वृंदावन में वहाँ के जो भक्त हैं वो ब्रजवासियों के भाव में जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं, उन्हें साल में एक बार मिलने के लिए जगन्नाथ जी आतुर रहते हैं। तो रथ में बैठकर क्यों भाग रहे हैं वो, क्योंकि उनको वृंदावन के ब्रजवासियों का प्रेम का आस्वादन करना है, उनकी सेवा का, उनके आदान प्रदान का अनुभव करना है उनको, इसलिए वो जाते हैं। तो जब वो 7 दिन गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं तो वो वृंदावन के भाव में निवास करते हैं, ब्रज भाव में निवास करते हैं, सारे वहाँ के जो निवासी हैं वो वृंदावन के भाव में उनकी सेवा करते हैं, और उस भाव से वहाँ पर 1 एकड़ के एरिया में वहाँ पर भी खुलेआम 1000 रसोइयाँ भोजन बनाते हैं, तो ब्रजवासी के भाव में बनाते हैं। इसलिए कहा गया कि जगन्नाथ जी का मूल मंदिर का प्रसाद स्वादिष्ट सर्वोत्तम होने पर भी जो गुंडीचा मंदिर के रहने के समय का जो वहाँ प्रसाद है वो उससे भी अति उत्कृष्ट स्वादिष्ट है। वहाँ पर भी जो जब लगता है व्यंजन वही मालपुआ बनते हैं, रबड़ी बनती है, सब कुछ बनता है, लेकिन उसमें और इसमें भी अंतर है, एक गुड बेटर बेस्ट, उससे बेस्ट और बेस्ट बेस्ट का बेस्ट ऐसा प्रसाद गुंडीचा में बनता है। तो ये सब भाव की बात है, जगन्नाथ जी का जो पूरा अस्तित्व है जगन्नाथपुरी का वो भाव पर ही आधारित है, उनका दर्शन में ही महाभाव का प्रतीक है, उनका तीनों का जो शरीर का स्वरूप है वो दिव्य भाव का अनुभव है, वो जो कुछ करते हैं वो भी भाव का प्राकट्य है, जो भी उनकी लीला है जितनी अद्भुत, जितनी अचंभित करने वाले, जितनी आश्चर्यजनक लीला है वो सब उनका भाव का एक प्रतीक है। इसलिए जो भोजन भी वहाँ पर ग्रहण करते हैं उसका स्वाद भी बहुत भाव के ऊपर आधारित है। तो थोड़ा सा दिव्यता में अंतर हो जाता है जब वो गुंडीचा में रहते हुए भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो स्वाद बड़ा अद्भुत होता है। तो ये जगन्नाथ की प्रसाद की महिमा जितनी बोली जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति, कोई अश्रद्धालु व्यक्ति भी वहाँ पहुँचेगा ना, तो ये दर्शन उनका और वो महाप्रसाद का आस्वादन करने से उसके हृदय में निश्चित रूप से 100% परिवर्तन हो जाता है। जगन्नाथपुरी में जाने के पश्चात मैं याद, अभी मुझे याद है, मैं 2009 में मेरे भैया को ले गया था, पहली बार मेरे बड़े भैया अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचे थे, अरे जगन्नाथ जी को देखकर इतने इतने आसक्त हो गए उनसे कि वहीं पर जाके उन्होंने जगह देखना आरंभ किया, मुझे यहां पर आके सेटल होना है। मैं तो इतना आश्चर्य हो गया, पहली बार आए हकीकत में जाकर एजेंट लोगों से मिलकर आए और जगह का पता करके आया कि भाई रिटायर्ड होना है तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ क्या। मेरे ससुर जी सासू जी एक बार आए थे, हमारे गुरु जी यात्रा ले गए थे, ओपन यात्रा थी सबके लिए, तो सासू जी ससुर जी आए थे तो वो भी जगन्नाथ से जगन्नाथ के प्रेम में पड़े और जगन्नाथ जी का विग्रह घर पे लेके आए। आज भी उनके घर में गणेश जी का जब भी सेवा होती है तो वो जगन्नाथ जी के विग्रह को श्रृंगार करके उनको भोग लगाते हैं और वो भोग जो मोदक का हो या व्यंजनों का हो वो फिर गणेश जी को लगाते हैं और गणेश जी हमारे ससुर जी के घर में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद गणेश चतुर्थी को प्राप्त करते हैं। ऐसे मैंने मेरे खुद के रिश्ते में ससुर सास को और मेरे बड़े भैया को परिवर्तन होते हुए जगन्नाथ जी का प्रसाद खाकर देखते हुए मैंने देखा हुआ है। और जो परिवार के बाहर के लोग मित्र परिवार में आते हैं, यात्री परिवार में आते हैं, सब लोग मैंने देखा है जगन्नाथ जी का प्रसाद खाकर भाव विभोर होते हुए मैंने देखा है। जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए सब लोग लालायित रहते हैं ले जाने के लिए। और एक प्रसाद है खाजा वो खाजा का ऐसा महात्म्य है कि खाजा जगन्नाथ जी को इतना प्रिय है, कहते हैं कि जगन्नाथ जी खाजा बनते बनते ही ग्रहण करते हैं, उसको अलग से तुलसी वगैरह लग के मंत्र बोल के भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जगन्नाथपुरी में जितने भी खाजा मिलते हैं वो सब प्रसाद है, क्योंकि जहाँ जहाँ खाजा बन रहा है वो गेहूं का एक कुरकुरित बहुत अच्छा चटपटा आइटम बनता है, बहुत मीठा होता है, बहुत उसको चाशनी में डुबाया जाता है, क्या करें उसका वर्णन, अभी बोलते हुए मुँह में पानी आ रहा है। हाँ, ऐसा सुंदर जो खाजा भोग है उसका प्रसाद वो बहुत विशेष है जगन्नाथपुरी का। और एक जगन्नाथपुरी की विशेषता है कि ये जो भोग पाने में जगन्नाथ जी किसी भी जाति पाति का विचार नहीं करते हैं। जगन्नाथपुरी ऐसा एक ही धाम है जिसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति के, जितने प्रकार के, जितनी जातियां हैं, पता नहीं कहते हैं 37 प्रकार की जातियां हैं, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक 37 प्रकार के लोग हैं वंश में, और सभी लोग जगन्नाथ की सेवा करते हैं। समझो कोई चंदन का तेल निकाल रहा है तो एक ही परिवार पीढ़ियों पुश्तों पुश्तों तक सदियों तक वही सेवा करते रहेगा। भोजन करने वाले जितने प्रकार के लोग हैं वो सब्जी वाले काटने वाले काटते रहेंगे, रसोई में रसोई वाले रसोई करते रहेंगे, असिस्टेंट करने वाले असिस्टेंट करते रहेंगे। जगन्नाथ का भोग लगाने की सेवा, श्रृंगार की सेवा, दातून करने की सेवा अलग परिवार करता है। शबर दाइत जैसे जो ब्राह्मण इतर जाति हैं वो भगवान की विशिष्ट सेवा करते हैं। विद्यापति के वंश में जो ब्राह्मण हैं वो उनकी सेवा करते हैं। और भोजन के लिए जगन्नाथ जी कहीं भी खा सकते हैं, वो भाव के भूखे हैं। तो हमारे भारत में दो प्रकार के दो कर्माबाई हो गई है, एक नागपुर में थी और उनकी वहां पर अलग लीला है, और एक जगन्नाथपुरी की कर्माबाई है। वो कहते हैं अपने पति को खोजते खोजते वहां पर आई थी, पति गायब हो गए थे तो पति तो नहीं मिले, लेकिन जगन्नाथ जी को देखकर बड़ी आकर्षित हो गई और अपने घर की ठाकुर जी को भगवान को भोग लगाती थी, वो उनकी खिचड़ी बनाने की बहुत कला थी उनको। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है ना, तो भोग लगाते समय वो जो मुख्य पांडा जो है ना वो कुछ मुद्रा करते हैं और वो मुद्रा करके वो मुद्रा संपन्न होती है, फिर वो जगन्नाथ जी को वो मंत्र बोलकर वो भोग अर्पण करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, वो पुजारी मुद्रा कर रहे थे लेकिन मुद्रा में वो सिद्धता नहीं हो रही थी, मुद्रा पूर्ण नहीं हो रही थी। मुद्रा में एक होता ना, उनको पता चलता है कि मुद्रा हमारे सही हो गई, तो वो हो ही नहीं रही थी उस समय। अभी अगर मुद्रा नहीं हो रही है तो जितने व्यंजन रखे गए वो जगन्नाथ जी को अर्पण नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। तो ये कर्मा भाई वहाँ दर्शन कर रही है उस समय पर, देख रही कह रही है तो इनको मुद्रा परिपूर्ण नहीं हो रही है, अटके हुए हैं, भगवान का भोग अटका हुआ है। तो उसने अपने घर में भोग में खिचड़ी बनाई थी, गर्मा गर्म बहुत सुंदर स्वादिष्ट। तो ऐसा उसके मन में स्फूर्त विचार आया, वो जाकर पांडा जी को बताया, पांडा जी मेरे घर में बहुत बढ़िया खिचड़ी बनी है, लेके आऊं क्या मैं, आपका भोग न टल जाए, भोग का समय न टल जाए। तो उन्होंने इस तरह से देखा उसको, अरे तुम कौन सी जाति की, कौन पता नहीं, सीधे अपने घर का व्यंजन भोग लगाऊं क्या, ऐसे पूछ रही हो। वैसे जगन्नाथ जी को उनके ही रसोई में बना हुआ ही भोजन अर्पण करते हैं, जिसमें यज्ञ होता है, जिस यज्ञ की ध्वनि में से ही मशाल लेकर बाकी 752 चूल्हे जलाए जाते हैं, वहीं से बनाया हुआ भोग वही उनको अर्पण हो सकता है, बाहर का भोग अर्पण नहीं हो सकता है, वो यहाँ का वहाँ का लिखा हुआ तथाकथित नियम है। लेकिन उन्होंने उसका पालन करते हुए कर्मा बाई को बोला, अरे चलो तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम पता नहीं कुछ नहीं कहाँ से आते हैं, जाति पाति का हिसाब किताब नहीं है, और चले भगवान को भोग लगाने, ऐसे कुछ बातें बोली उड़िया में। कर्मा बाई को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बड़े भाव से उन्होंने अपनी खिचड़ी को उन्होंने अर्पण करने का इच्छा रखी थी, उसको रिजेक्ट किया गया, नकार दिया गया, तो घर पे गई उन्होंने अपना, फिर थोड़ा दुख हुआ उनको। रात को गजपति राजा को स्वप्न आया, जगन्नाथ जी आए उसके अंदर, और राजा को जगन्नाथ जी ने आदेश दिया, जाओ कर्मा बाई को ढूंढ के निकालो और कर्मा बाई की माफी मांगो। तो राजा ने कहा, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, वो मेरे लिए प्रेम से खिचड़ी अर्पण करने आई थी, मुझे भी उसको ग्रहण करना था, लेकिन तुम्हारे नियंत्रण के अंदर जो पुजारी लोग वहाँ काम करते हैं उन्होंने उसको नकार दिया, भगा दिया उसको, तो बड़ी दुखी हो गई और उससे ज़्यादा दुखी मैं हो गया हूँ। तो राजा तुरंत गए और उसने ढूंढ के निकाला, कर्मा भाई कौन है, भाग्यवान जीव कौन है जिसके हाथ की खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ जी लालायित हैं, कौन है वो महान औरत। राजा ने ढूंढ के निकाला, उसको पालकी में बिठा के लाया और रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारे रसोई में तुम खिचड़ी बना दो और हम उसको जगन्नाथ जी को भोग लगाएंगे, जगन्नाथ जी ने उसकी विशेष मांग की है, तो अभी ये खिचड़ी जो है वो जगन्नाथ जी के रसोई में नहीं बन रही है, जगन्नाथ जी के रसोई में ना बनते हुए उस कर्मा बाई के झोपड़ी में बन रही है। कर्मा बाई ने बड़े प्रेम से अपनी झोपड़ी में वो खिचड़ी बनाई, ना यज्ञ हुआ, ना मशाल जली, ना कुछ नहीं हुआ, प्रेम की ज्योति से, प्रेम के मशाल से उसको प्रज्वलित करके अपने चूल्हे को उससे खिचड़ी बनाई और उसको वही तरीके से उस वाद्य के साथ सैनिकों के साथ ढककर जगन्नाथ जी को भोग लगाया गया। लेकिन आश्चर्य क्या हुआ कि वो भोग लगाने जा ही रहे थे, उतने में बन रही थी खिचड़ी, तभी दो बालक, एक गोरा एक सांवला सा बालक उसके घर पे आया और कहिया मैया भूख लग रही है बहुत, कछु खावे को है का, कुछ खाने के लिए है। तो उसने कहा कि मैं जगन्नाथ के लिए खिचड़ी बना रहा हूँ, तुम खा सकते हो। तो अभी बड़ी उसको बड़ा वात्सल्य आया उनको देखकर, इतना प्रेम आया उनको देखकर, इतना लुभाना स्वरूप था उनका, इतना सुंदर चेहरा था, इतना वात्सल्य भरा आया मन में। तो उसने कर्मा बाई ने उन दोनों बालकों को बिठाया और वो खिचड़ी पेट भर के खिलाई, और वैसे ही वो ऐसे चाटते चाटते अपने हाथों को लेकर वैसे निकल गए वहाँ से। तो रहस्य की बात ये थी कि कर्मा बाई की खिचड़ी बनकर आने वाली थी, उसमें बीच का भोग का समय हो गया, तो जगन्नाथ जी को कर्मा बाई खिचड़ी बना रही है इसके लिए वो व्याकुल हो गए खाने के लिए। तो जब भी भोग लगाकर मंत्र मंत्र बोलकर वो पर्दा बंद कर दिया तो जगन्नाथ बलदेव दोनों भाग गए वहाँ से, और भाग के सीधा कर्मा बाई के घर पर गए दो बालक बनकर। उन्होंने वहाँ पर खिचड़ी खाई और वहाँ पर जब घंटी बजी मेन मंदिर में, अभी वो पर्दा पट खोलने वाला है, तो जगन्नाथ जी भाग भाग के वहां पर ऐसे खड़े हो गए हाथ सामने करके। तो पुजारी ने क्या देखा, अरे अभी तो खिचड़ी आनी बाकी है, लेकिन जगन्नाथ और बलदेव दोनों के मुख पे और हाथ पे खिचड़ी लगी हुई है। तो पता चला कि ये कर्मा बाई के पास इंक्वायरी किया गया, अरे भाई तुम्हारी खिचड़ी अब तक नहीं आई, जगन्नाथ जी को खिचड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दो बालक आए थे मेरे पास, उनको मैंने खिचड़ी खिला दी है, तो देखो ये खिचड़ी। तो वही खिचड़ी थी जो वैसे के वैसे खिचड़ी जगन्नाथ जी के हाथ में और मुंह में लगी हुई है। तो कहते हैं उसी दिन से जगन्नाथ जी के आदेश के अनुसार, राजा को दिए हुए आदेश के अनुसार, आज उसके जन्म में जितने भी दिन थे बाकी, जितने भी साल वो जी, हर दिन जगन्नाथ जी ने वो खिचड़ी उसकी ग्रहण की। फिर उसका देहांत हुआ, फिर उसकी पीढ़ी में जितने उसके बालकों को वो सेवा दी गई, उसके बालकों को सेवा दी गई। आज भी कर्मा बाई की पीढ़ी में जो व्यक्ति जीवित हैं, उसके परिवार के, उसके जो वंशज हैं, उन्हीं के घर से खिचड़ी जगन्नाथ जी को आती है और वही अन्न छत्र में बांटी जाती है। करीब करीब रोज 10,000 लोग उस दिव्य खिचड़ी को प्राप्त करते हैं। जो 10,000 भी होंगे तो पर्याप्त रहती है, 20,000 भी होंगे, 1,00,000 भी होंगे, तो वो जो खिचड़ी है वो पर्याप्त होती है। तो ये कर्मा बाई का जो भाव है जिसको भगवान ने ग्रहण किया, और इसी के लिए जगन्नाथ जी 56 भोग तो प्राप्त करते हैं और साथ साथ वो खिचड़ी भी प्राप्त करते हैं रोज, वो भी कर्मा बाई के वंशज के घर में बनी हुई। तो ऐसे अद्भुत तरीके हमारे जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने तो अनंत बार सार्वभौम के हाथ से और बाकी लोगों के हाथ से इस महाप्रसाद का आस्वादन करके हर बार दिव्य विकारों का अनुभव किया। फिर रघुनाथ दास जी आए वहाँ पर, तो बड़े अमीर राजकुमार थे वो, तो वे सन्यासी बनकर आए, तो पहले तो अन्य क्षेत्र के लाइन में खड़े हुए हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद देखा कि वो उनको भी विरक्ति आ गई, तो फिर वो वहाँ पर दूसरी जगह पर खड़े हो गए, जहाँ मांगने के लिए खड़े हो वहाँ न रहते हुए एक जगह खड़े हुए जहाँ पर कोई ला के देगा तो खाऊंगा, मांगूंगा नहीं। उसके बाद लगा कि अरे मांग मुझे कुछ लाकर लोग दे रहे हैं, तो भी त्याग कर दिया। फिर जाकर उन्होंने जहाँ पर गौवें यानी गाय जगन्नाथ जी का बचा हुआ प्रसाद उनको दिया करते थे, और गायें भी उसको खा नहीं पाती थी क्योंकि वो लौकिक दृष्टि से क्या कहते हैं उसको, खराब हो गया है क्योंकि खट्टा हो गया है, उसको वो खाते थे। इतना स्वाद उनको उसमें आता था कि स्वयं जगन्नाथ पुरी में वो गायों ने त्याग किया हुआ भोजन भी रघुनाथ दास जी ग्रहण कर कर आंखों से आंसू आ रहे उनके। तो चैतन्य महाप्रभु को खबर मिलती है कि रघुनाथ अभी गायों ने त्याग किया हुआ भी अन्न खा रहा है और उसमें आनंद ले रहा है। तो जगन्नाथपुरी के उस द्वार के मंदिर के बाहर चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं जहाँ पर रघुनाथ जी वहाँ पर वो खा रहे गायों का उच्छिष्ट। तो महाप्रभु उसके हाथ से छीनते हैं और खाते हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो खराब हो गया, वो अन्न है तो खट्टा हो गया है, तो खराब हो गया है। तो महाप्रभु जी कहते हैं आज तक मैंने जगन्नाथपुरी में जितना भी महाप्रसाद पाया है उसमें मुझे दिव्य स्वाद जरूर आया है, लेकिन आज जो स्वाद आ रहा है वो आज तक कभी भी नहीं आया है। और तुम छुप छुप कर ऐसा दिव्य अमृत का आस्वादन अकेले अकेले कर रहे हो, इसलिए मैं छीन कर खाने के लिए आज आया हूँ। उसके हाथ से छीन छीन कर जो गाय ने त्याग कर दिया था, जो रघुनाथ जी खा रहे थे, वो महाप्रभु चैतन्य ने उसका आस्वादन किया है। क्या दिखाया उन्होंने ये लीला करके, ये दिखाया कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद किसी भी अवस्था में हो, जानवर भी उसको त्याग देते होंगे, लेकिन उसकी दिव्यता, कृष्ण के अधरामृत का स्वाद और उसका सुगंध जो है वो नष्ट नहीं होता। हमारी इंद्रियां अगर दिव्य हैं, हमारी इंद्रियां अगर शुद्ध हो चुकी हैं, तो हम इस जगन्नाथ के महाप्रसाद का आस्वादन उस अवस्था में भी कर सकते हैं। इसका प्रमाण रघुनाथ जी के इस लीला के माध्यम से श्री गौरांग महाप्रभु ने हम सबको दिया है। तो वैसे हमारे जगन्नाथपुरी के भगवान जो है ना, वो कई कई जगह प्रकट हुए हैं। वैसे जगन्नाथपुरी के ठाकुर जी मायापुर में भी विराजमान हैं, अपने आप को वहाँ पर भी प्रकट करते हैं, जगन्नाथपुरी धाम को प्रकट करते हैं। क्योंकि जगन्नाथपुरी, मायापुर, वृंदावन तीनों अभिन्न धाम हैं, उनमें भेद करना अपराध है। तो मायापुर में भी जगन्नाथपुरी सीमांत द्वीप में विराजमान है। तो बड़ी लंबी लीला है, वो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे अभी, लेकिन प्रसाद की क्या क्या लीला है। देखो सबसे पहले तो बताएंगे आपको कि जब वो जो मंदिर है वो तो बड़ा प्राचीन है, कई बहुत पुराने सालों में सत्ययुग से उसकी कहानी है, और बड़ी लीला के माध्यम से जगन्नाथ जी वहाँ प्रकट हुए हैं। उनके आने से वहाँ जगन्नाथपुरी धाम प्रकट हुआ है। तो यथावकाश हमारा जो इस्कॉन मंदिर है वो स्थापन हुआ, इस्कॉन संस्था विश्व में स्थापन हुई, मायापुर में मुख्य केंद्र स्थापन हुआ। तो मायापुर का जो केंद्र है वो अंतरद्वीप में है, और ये जो है वो सुवांत द्वीप में है, कुछ ही 4 किलोमीटर आगे है बस। तो कुछ जगन्नाथ की भगवान की सेवा नहीं हो रही थी, जगन्नाथ भगवान की कुछ सेवा पूजा नहीं हो रही थी। जगन्नाथ जी कुछ लोगों को वहाँ पर झाड़ी में उनका अस्तित्व था, बेचारे भूखे थे, उनकी सेवा बंद हो गई थी, कुछ सेवा करने वाले लोग चले गए थे। तो आने वाले जाने वाले राहगीरों को आवाज़ सुनाई पड़ती थी कि मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो। तो लोगों को डर लगता था कि भाई भूत प्रेत तो नहीं यहाँ पर कोई, लेकिन कुछ लोगों ने साहस करके देखा तो फिर पता चला कि अरे तो झाड़ियों में तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा छुपे हुए हैं और वही पुकार रहे हैं। तो फिर मंदिर में रखा गया उनको, फिर उसकी भी सेवा एक बार ठीक से नहीं होने लगी। तो फिर इस्कॉन हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, मायापुर का जो हेडक्वार्टर्स है, केंद्र मंदिर है, उनके व्यवस्थाप भक्तों ने जो जय पताका स्वामी थे परम पूज्य, उन्होंने फिर वो बातें की और वो हमारे हमने ले लिया उसको सेवा में। लेकिन जय पताका स्वामी जी का ऐसा विचार था कि ये पूरा जो कायदे कानून का काम है ना, वो पूरा होना चाहिए, पूरी तरह से पक्के रूप में मंदिर हमारे नियंत्रण में आना चाहिए, फिर हम उसकी पूरी सेवा आरंभ करेंगे। लेकिन भक्त लोग उधर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, गुरु महाराज ने तो कहा था, लेकिन जब भक्त लोग जब वहाँ पहुँचे थोड़ा सा अधिभार ग्रहण करने के लिए, तो बड़े उत्साहित होकर उन्होंने पूरे कागजात कायदे कानून व्यवस्था पूरी होने के पहले ही जगन्नाथ जी को राधा माधव मंदिर से, अपने अंतरद्वीप वाले मंदिर से भोग लेकर अर्पण करना शुरू कर दिया। अभी परम पूज्य जय पताका महाराज जी को उसका पता नहीं है कि वो तो अभी तक कायदे कानून की बातें कर रहे हैं। तो फिर वो जो पुजारी थे जो वो वहां से प्रसाद लाकर वहां पर भोग लगाकर वहां से लाते थे भोग, उनको पता चला कि जयपताका महाराज जी की इच्छा है कि अभी उनको भोग न लगाएं, तो बाद में मालूम पड़ा उनको, तो उन्होंने क्या किया, वो भोग लगाना बंद कर दिया। एक दिन ही एक भोग उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि वो गुरु जी का आदेश पता चला उनको। तो उस दिन जिस दिन भोग नहीं लगाया, उस दिन वो पुजारी लोग वहीं सोते थे, तो वहीं सो गए, तो पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, और मतलब स्वप्न गिरा पुजारी को। वो स्वप्न में क्या हुआ, वो पुजारी स्वप्न में उठकर जगन्नाथ जी के विग्रह को उत्थापन यानी सुबह का जगाने के लिए पर्दा खोलने जा रहे हैं, तो पर्दा खोलते क्या दिखते हैं, स्वप्न में दिख रहे कि पर्दा खोलने के बाद जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा उधर है ही नहीं, मतलब कहाँ चले गए पता नहीं। तो वो बड़े स्वप्न में व्याकुल हो गए, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, यहाँ वहाँ पुकारने, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पुकारने लगे। पुकारते पुकारते जब जंगल में रास्ते में गए, तो जंगल में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी स्वप्न में दिखाई पड़े कि भाग रहे हैं, तो उनको पुकार रहे, अरे भगवान, अरे जगन्नाथ भैया, अरे बलदेव भैया, कहाँ जा रहे हो। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जोर जोर चिल्ला रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा है, मैं तो राधा माधव मंदिर इस्कॉन के मंदिर में जा रहा हूँ, वहाँ बड़े अच्छे व्यंजन बनाकर भोग लगाए जाते हैं, हमको पता चला है हम वहाँ जा रहे हैं। उस बात पे वो स्वप्न टूट गया। पुजारी रात को उठा, उन्होंने सुबह उठ के पहले जाकर परम पूज्य जयपताका महाराज जी को ये खबर सुनाई कि मुझे स्वप्न में ऐसा ऐसा स्वप्न आया कि जगन्नाथ जी जंगल के रास्ते भी दिखाई पड़े, राधा माधव मंदिर की ओर भाग रहे हैं, कह रहे हैं मैं यहाँ पर अभी नहीं रहूँगा, मैं वहीं जाकर अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग ले लूँगा। तो जयपताका महाराज जी कहते हैं, अरे पहले क्यों नहीं बताया, तुरंत अभी के अभी, चाहे कायदे कानून कुछ भी हो, कुछ भी पेपर वर्क होता रहे, उनको पहले भोग लगाना आरम्भ करो। इसका मतलब जगन्नाथ जी ने बताया कि उनको अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगाना, खाना अच्छा लगता है। तो फिर वो स्थिर हो गए, सब मंदिर अपने नाम पे हो गया, सब कुछ हो गया बढ़िया से, और बढ़िया भोग लगाना शुरू किया। एक दिन जनन निवास प्रभु वहाँ पर आए, तो उन्होंने मन में इच्छा की कि जगन्नाथ जी को 56 भोग खाने की इच्छा होती है, हम तो 2-4 व्यंजन लगा रहे हैं लंच के हिसाब से, 5-6 आइटम। तो मन में संकल्प किया, इतना तो धन नहीं था उस समय, छोटा सा मंदिर था, नया नया मंदिर बनाया था, तो धन की इतनी गुंजाइश नहीं थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं जाकर जगन्नाथ के सामने संकल्प करता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, जगन्नाथ जी महाराज आपको 56 भोग लगाने की हमारी इच्छा है, आज हम लगा रहे हैं, आगे की व्यवस्था आप कर लेना। तो पहली बार 56 भोग का लगाया, तो किस कुछ डोनर लोगों को, मेहमान लोगों को लेके आए वहाँ पर, और बताया कि आज हमने 56 भोग लगाया है, हमारी ये तमन्ना है कि 56 भोग रोज लगे जगन्नाथ जी को। तो तुरंत उसने, उस व्यक्ति ने जो मेहमान बनकर प्रसाद पाने के लिए आया था, उसने कहा कि मेरी तरफ से पहले महीने का भोग स्पॉन्सर। तो वो प्रभु जी इतने खुश हो गए, जनन निवास महाराज प्रभु जी मंदिर गए, और उन्होंने किसी भक्तों को बताया कि देखो आज मैंने संकल्प किया, और पहले दिन ही एक महीने का इंतजाम हो गया। तो कुछ भक्त लोग, उसमें एक माता जी थी वो भी सुन रही थी, तो वो कहती है कि अगले 2 महीने का उसके बाद वाले मेरे तरफ से भोग लगा देना। और जनन निवास प्रभु बताते हैं अपनी यादों में कि पहला महीना और बाद के 2 महीने जो स्पॉन्सर हो गए थे वो आज तक चल रहे हैं, कभी बंद नहीं हुआ, कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जगन्नाथ जी के भोग के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं था। कोई ना कोई प्रेमी भक्त आता था जिसके नसीब में वो सेवा है, वो देता था। और आज उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि सब जनता को उसका लाभ मिले, जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाने का, रोज राजापुर के सीमांत द्वीप के जगन्नाथ जी को लगाने के लिए 25,000 की पूंजी कोई एक बार देगा तो उसको वो फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे, और उसके उपलक्ष्य में जगन्नाथ जी को जिंदगी भर हर रोज 56 भोग लगाने का इंतजाम करने का उन्होंने व्यवस्था करके रखी है। फिर वहाँ पर एक प्राण गोपाल जी नाम के पुजारी थे जगन्नाथ जी के, उनका बालक है ना पुत्र बहुत बीमार हो गया, और वो बहुत बीमार होने के पश्चात उसको डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पर तो छोटा सा अस्पताल था, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा मर जाएगा, यहाँ पर नहीं बचेगा, उसको भर्ती मत करो, ले जाओ उसको आप। तो बोले कोलकाता ले जाओ तो कुछ हो सकता है, तो बोला कोलकाता जाने के लिए पैसा तो है नहीं। तो वो बच्चा बेचारा वहाँ रखा था उसको अस्पताल में, तो ये पुजारी वापस मंदिर में आया, भगवान के लिए भोग लगाया और प्रार्थना किया कि भगवान मेरा बच्चा अगर गुजर जाता है तो उसको अच्छा गति देना आपके चरणों में, और जगन्नाथ जी का चरणामृत तुलसी और चरणों के फूल वो ले गया। और अपने बहुत ही अति विकट अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में जो बालक था उसको चरणामृत पिलाया, और उसके सर पे तुलसी और गुलाब रखा, उसका फूल रखे। अगले दिन मिलने गया तो बिल्कुल खड़ा होकर बैठा हुआ बालक, अभी इतनी गंभीर अवस्था में था, मृत होने की अवस्था में था, जगन्नाथ जी का चरणामृत प्राप्त करते ही एकदम ठीक ठाक हो या अभी भी बहुत अच्छी तरह से वो अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का चरणों का फूल भी महाप्रसाद है, उनका चरणों का तुलसी भी महाप्रसाद है, उनका चरणामृत भी महाप्रसाद है, उनको जो खाते हैं वो भी महाप्रसाद है। एक रिक्शा वाला था, वो भूखा भूखा वहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर में आया राजापुर में, तो उसको खिचड़ी प्रसाद दिया गया, तो उसने और एक प्लेट भी ले लिया ये सोचकर कि तो उसने एक प्लेट और ले लिया और अपने मुस्लिम रिक्शा वाले को भी दिया, खुद खाया पेट भर के और दूसरे को दिया। तो वो जो मुस्लिम रिक्शा वाला था उसने तो रिजेक्ट कर दिया, उसको फेंक दिया जमीन पर, बोले हम लोग मूर्ति को लगाया हुआ खाना नहीं खाते। ठीक है, नहीं खाते, ठीक है। रात को स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और उसके गर्दन पे बैठ गए, जगन्नाथ जी नहीं बलदेव जी आए, और बलदेव जी आकर गर्दन पे बैठ गए और बोले तुम मेरे भाई का प्रसाद नहीं खाते हो, उसका अपमान करते हो, मैं तो जान से मार डालूंगा। तो सुभद्रा जी को दया आई, तो वो चिल्ला रहा है मुसलमान व्यक्ति, बचाओ बचाओ बचाओ, तो ये कहाँ छोड़ रहे उसको। तो सुभद्रा जी कह रहे हैं मारो मारो उसको मारो, तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो। जगन्नाथ जी मना कर रहे हैं, सुभद्रा जी मारने के लिए कह रही है। तो फिर बाद में फिर सुभद्रा जी बोली चलो छोड़ो उसको छोड़ दो, तो फिर बलदेव जी को छोड़ाने के लिए जगन्नाथ जी खुद गए और छुड़ाया उसको। अगले दिन ये सपने में सब हुआ, और सपने में कहते हैं उसको वो इतना सांस उसकी रुक गई थी, इतना चौकअप हो गया था, वो कंठ अवरुद्ध हो गया था उसका, तो कैसे भी उठा और रात को सपने में से उठ के जाके टंकी से पानी पिया, पहला दिमाग ठंडा कर दिया अपना उसने, और दूसरे दिन मंदिर में आया जगन्नाथ जी का पूजा करवाया पूरा। पुजारी को बोला मुझे प्रसाद चाहिए दे दो, तो उस दिन वहाँ बैठ के बड़े प्रेम से आंखों से आंसू में रखते हुए खिचड़ी प्रसाद पाया जगन्नाथ जी का। अगली बार क्या हुआ, वहाँ एक प्रहलाद नाम का पहरेदार था, हाँ तो प्रहलाद नाम के पहरेदार ने, वो बलदेव जी का जन्मदिन था उस समय, तो बड़ा धूमधाम से मनाया गया बलदेव जी का जन्मदिन। तो जन्मदिन का महाप्रसाद जो है मटके में भर भर के ये प्रहलाद पहरेदार को दिया, तो प्रहलाद पहरेदार को थोड़ा नींद आ गया, तो वो बाजू में रखा और वो बिना, अभी जगन्नाथ जी का ऐसा ना मैं बताना भूल गया आपको, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है ना, जब भी आपके पास आएगा आपने मुंह धोया नहीं रहेगा, आप अभी अभी उठे होंगे, आपने स्नान नहीं किया होगा, कुछ भी हो गया रहेगा, आपको तुरंत ग्रहण करना है उसको। हरिदास ठाकुर भी रोज उसके पास चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आते थे, और वो कहते थे मेरा जप नहीं हुआ है। एक बार गोविंद आया और कोई भक्त आए लेके, तो कहते मैं तो नहीं ले सकता उसको, लेकिन तुम जगन्नाथ प्रसाद लाए हो तो उसका कर्ण स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। तो उनका नियम पूरा नहीं हुआ है फिर भी उसको वो ग्रहण करते थे, हाँ चैतन्य महाप्रभु लेके आते थे तुरंत ग्रहण करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर सुबह 4 बजे उसके घर पर पहुँच गए, दरवाज़ा खटखटाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े पंडित वेदवेत्ता थे, वो बड़े नियम पालन करने वाले, लेकिन जब भक्त बने महाप्रभु की कृपा से षडभुजा दर्शन करने के बाद में, उसके बाद एक दिन जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद लेकर महाप्रभु उसके घर पे पहुंचे, सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार। तो सुबह सुबह अभी मुंह भी कुल्ला नहीं किया है, मुख मार्जन भी नहीं किया, ऐसे अवस्था में जगन्नाथ का प्रसाद लेते तुरंत खा जाते। तो महाप्रभु हंसकर कहते हैं देखो देखो इतने बड़े वेदवेत्ता, इतने बड़े राजगुरु, इतने बड़े पंडित, देखो बिना नियम के तुरंत खा रहे हैं। फिर बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको कि उन्होंने समझ गए, अभी वो भक्त बन गए हैं कि जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद का आस्वादन तुरंत करना चाहिए। तो प्रहलाद जी यहाँ पर जो पहरेदार हैं वो भूल जाते हैं, सो जाते हैं, उतने में कुत्ता आकर पूरा खा के चला जाता है, तो बड़ा वो पछताते, अरे कुत्ता खा चला गया, अभी क्या करेंगे, चलो सो जाते हैं। सो गया घर जाके, तो रात में जगन्नाथ जी, क्योंकि बलदेव जी का बर्थडे था ना, तो जगन्नाथ जी बहुत क्रोधित होकर उसके गले पर बैठ गए, बोले मेरे भैया के जन्मदिन का प्रसाद तुमने नहीं खाया, कुत्ते को खिलवाया, निग्लेक्ट कर दिया उसको, तुरंत नहीं खाया उसको, अपमान किया तुमने मेरे भैया के माँ प्रसाद का। तो जगन्नाथ जी गले में बैठे हुए, सुभद्रा जी बोल रहे छोड़ो छोड़ो उसको, तो बाद में क्या हुआ, वह दोनों ने उनको छोड़ दिया, फिर उसने जाकर मांग मांग के खाया। तो वो प्रहलाद जी अभी भी है वहाँ पर, वो अभी भी याद करते हैं कि कैसे भी स्वप्न आया था, वो बताते हैं कि जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो तुरंत ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से एक नियम है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का, कि अभी एक बार क्या हुआ, वो भोग लगा रहे थे और भोग लगाने के समय दरवाजे वगैरह पुराने थे, नया नया मंदिर था, दरवाजा आधा ही बंद होता था और भोग लगाने के लिए तुलसी लाना भूल गए। भोग लगा रहे हैं सब लेकिन तुलसी नहीं, अभी तुलसी लगाने के लिए जाएंगे तो एक तो प्रसाद का समय टूट जाएगा भोग लगाने का, ऊपर से दरवाजा आधा खुला है तो कुत्ता कोई भी अंदर आके खाएगा तो प्रसाद भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर पुजारी ने सोचा अभी मैं तो अकेला हूँ यहाँ पर, अभी कोई जा सकता नहीं हूँ, दरवाज़ा भी पूरा बंद नहीं होता है, तो मैं अभी भोग लगा देता हूँ और भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ जी माफ़ कर देना, अभी तुलसी लाई नहीं है लेकिन आप प्रेम से मेरा भोग जो है वो स्वीकार कर लेना। ऐसे करके बैठ गया उधर, गायत्री जप किया, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए और पर्दा खोल के जब गया अंदर तो देखा कि चावल के ढेरे पर एक पूरा 6 इंच का तुलसी का पौधा, मतलब पत्ते के साथ में उसका जो डंडी है वहां विराजमान था। जगन्नाथ जी ने स्वयं अपनी तुलसी की व्यवस्था कर ली। दूसरा से ये जगन्नाथ जी का लीला जो है प्रसाद का बहुत अद्भुत है और अनंत लीलाएं उसकी। जगन्नाथ जी प्रेम की वजह से जो है वो सब कुछ ग्रहण करते हैं और हम सब लोगों को देखना यही है कि वो भाव के भूखे हैं और क्योंकि भाव से ग्रहण करते हैं इसलिए उसके अदरामृत का स्पर्श होने के बाद स्वाद और सुगंध उस प्रसाद में आता है। तो जगन्नाथ जी के साथ में जब भी आपको कुछ करना है, उनकी सेवा करनी है, तो भाव से करना, कोई कर्मकांड के रूप में या कुछ नियम के रूप में कोई बोझ समझ कर उसको नहीं करना। जगन्नाथ जी का प्रसाद जो भी ग्रहण करता है और जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसे दोबारा इस विश्व में जन्म देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जगन्नाथ जी के इस महाप्रसाद के गुणगान के साथ हम आपकी विदा लेते हैं और हमारी कथा को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ, महाप्रसाद की जय हो।